परमपिता परमेश्वर की अनुग्रह से प्रातःकाल हम लोग विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ सातवां अध्याय तृप्तिदीप प्रकरण उसके ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा था जो निरिध्यासन है, भोजन आदि करते समय भी व्यक्ति निरिध्यासन कर सकता है। तो पूर्व पक्षी वहां शंका करते हैं, तर्कादि शास्त्र पढ़ते समय भी तो कर सकता है। तो यहां समाधान दिए, भोजन के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, लेकिन तर्कादि शास्त्र बिना पढ़े जीवित रह सकता है। तो इसलिए अनुसंधान के एक अंग, निरिध्यासन के एक अंग हो गया भोजन आदि। तो फिर कहते हैं सेवा कृषि आदि करने से निरिध्यासन में विघ्न होता है। भोजन आदि में तो चल जाएगा, इतना ज्यादा विक्षेप नहीं होता है, लेकिन कृषि वाणिज्य नौकरी ये सब करेंगे तो उसमें अधिक विघ्न होता है। तो आत्मानुसंधान उसमें नहीं बन पाएगा। तो पूर्व पक्षी पुनः शंका करते हैं कि जैसे जनक आदि थे, वो लोग तो राज्य परिपालन करते थे, ब्रह्मज्ञानी थे। तो उसके ऊपर कहते हैं जनक आदि जो है दृढ़ बोध वाले थे, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान उनको हो चुका था, और उसके बाद राज्य आदि भी पालन करते थे। आपको भी यदि ऐसे दृढ़ बोध है तो आप भी तर्क पढ़ सकते हैं, राज्य पालन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कृषि सेवा जो भी है कर सकते हैं। तो यहां दो चीज है, एक तो जैसे कोई सेवा आदि करते हैं ना, निष्काम भाव से यदि सेवा करें तो अंतःकरण शुद्ध होता है। कुछ भी है, चाहे आप घर की सेवा करें, चाहे कृषि करें, चाहे किसी ऑफिस की सेवा करें, चाहे किसी सोसाइटी की सेवा करें, निष्काम भाव से यदि आप सेवा करते हैं, उस सेवा के माध्यम से अंतःकरण परिशुद्ध होता है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा जो है उत्पन्न होती है। तो उस रूप से भी आप सेवा कर सकते हैं। और दूसरी बात कहेंगे ज्ञान होने के उपरांत प्रारब्ध कर्म जो रहता है वो स्वाभाविक फल देगा। तो उस फल को जैसे जनक आदि थे, उनका प्रारब्ध था राज्य परिपालन, उनको तो ज्ञान हो चुका था, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो चुका था, तो इसलिए राज्य आदि करने से उनकी कोई हानि नहीं है। लेकिन आजकल सब समझ जाते हैं कि हम भी जनक हैं। बहुत सारे लोग यही समझ लेते हैं कि बहुत यह हम ही जनक है। एक आप लोग जानते हैं स्वामी रामानंद जी महाराज एक बार बतला रहे थे, हम लोग बनारस में थे तो ऐसे ही प्रश्न आया, तो वो कहे, स्पष्ट कहे, आप लोग कभी भी जनक को आदर्श मत मानिए, सुखदेव को आदर्श मानिए, सुखदेव को, क्योंकि वहां त्याग प्रधान है। और आप सोचेंगे नहीं मैं भी भोग विलास करते हुए जनक बन जाऊंगा तो आप फंस जाएंगे उसमें। इनके तो प्रारब्ध था इसलिए उनको राज्य करना पड़ा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कहते हैं जनक आदि जो राज्य परिपालन कर रहे थे उनको दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो गया था। आगे शंका करते हैं, 31वां श्लोक देखिए, ननु तत्वविदः संसार असारताम जानन्तः कुतस्तत्र प्रवर्तिष्यन्ति सन्ति इति आशंक्य प्रारब्धस्य अवश्यंभावी फलत्वात् भोगेन तत्तत्क्षयाय प्रवृत्तिरित्याह। कहते हैं जो तत्वविदः तत्व को जो जानने वाला है, संसार असारताम जानंतः, संसार जो है असार है, झूठा है, ऐसे जानते हुए जानंतः कुतस्तत्र प्रवृत्ति संति, उसमें फिर प्रवृत्ति कैसे होती है। जब आप एक बार जान लिए कि ये मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या होने के बाद वहां फिर प्रवृत्ति कैसे होती है, प्रवृत्ति वहां नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आप सोच लीजिए, घरों में आजकल सजाते हैं वो प्लास्टिक के आम है, लेमन है, फल वगैरह है ना, उसमें भी एक डालिया में रख के सजाते हैं जहां भोजन करेंगे। अब वहां आप जानते हैं ये असर है, जानने पर भी सजा करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं। खाने में आप प्रवृत्त होंगे क्या? नहीं होते हैं। लेकिन यहां कहते हैं जनक आदि प्रवृत्ति कैसे कर रहे हैं वहां, जब संसार असत्य है, ऐसे जानने के उपरांत भी कुतस्तत्र प्रवृत्ति संते, फिर वहां प्रवृत्ति कैसी होगी, ऐसी आशंका होने पर उसके उत्तर में कहते हैं प्रारब्धस्य अवश्यंभावी फलत्वात्, जो प्रारब्ध है, जो कर्म शरीर को प्रारंभ करने वाला जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म, और उसमें भी बहुत सारे कर्म, एक कर्म नहीं है, बहुत सारे कर्म हैं जो सुख देने वाले, दुख देने वाले हैं। तो बहुत सारे कर्म जो आरंभ हो चुके हैं इस जन्म के लिए, अब आरंभ हो गए ना कहीं उसका अंत है, वेग जब समाप्त हो जाएगा तो अंत हो जाएगा, उस बीच में आपको आत्मज्ञान हो गया, आप प्रयास किए, पुरुषार्थ किए, आपको आत्मज्ञान हो गया। जैसे कहते हैं ना फैन चल रहा है, आपको ठंड लगी तो आप स्विच ऑफ कर दिए, ऑफ करने के बाद भी उसकी जो गति चल रही थी, आस्ते 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 फिर फैन रुक जाता है। स्विच ऑफ करने का मतलब आपको ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद भी फैन जो है चल रहा है। ठीक इसी प्रकार जो शरीर प्रारंभक कर्म है, ये चल रहा था, उसकी एक गति थी, उस बीच में आपको ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद भी शरीर जो है अपने क्रिया करेगा, उसमें हो सकता है राज्य पालन है, चाहे और भी कोई क्रिया उसमें हो सकती है। तो इसी प्रकार यहां प्रारब्धस्य अवश्यम भावी फलत्वात्, अवश्य फल देने वाला है, उसको कोई भी हटा नहीं सकता जो बलवत् प्रारब्ध है। भोगेन तत्त क्षयाय प्रवृत्ति, भोग से उसका क्षय होगा। मिथ्यात्वासनादार्ढ्ये प्रारब्ध क्षय कांक्षया अक्लिश्यन्तः प्रवर्तन्ते स्वस्वकर्मानुसारतः। मिथ्यात्व वासना दार्ढ़ी प्रारब्ध क्षय कांक्षया स्वस्व कर्मानुसारतः अक्लिश्यन्तः प्रवर्तन्ते। इसमें कहते हैं मिथ्यात्व वासना दार्ढ़ी, संसार मिथ्या है, ऐसा वासना जो है आपकी दृढ़ हो गई। संसार कैसा है? मिथ्या है, दृढ़ है। प्रारब्ध क्षय कांक्षया, जो कर्म आरंभ हो चुका है उस प्रारब्ध के क्षय के लिए स्वस्व कर्मानुसारतः, अपने अपने जिसका भी जो कर्म होगा उस कर्म के अनुसार अक्लिश्यंत बिना कष्ट हुए, क्लेश कहते हैं कष्ट को, अक्लिश्यंत बिना क्लेश से उस कर्म में प्रवृत्ति होती है। अब यहां ऐसे सोच लीजिए, संसार मिथ्या है ऐसा निश्चय जिसको हो गया है, जो भी प्रारब्ध कर्म उसका होगा ना, जिसका भी जो होगा वो स्वतः प्रवृत्त होगा, उसमें स्वतः प्रवृत्त होगा, प्रारब्ध ही वो कर्म कराएगा, लेकिन मैं कर रहा हूं ऐसा भाव उसमें नहीं है, क्योंकि वो नष्ट हो चुका है। ज्ञान होने के बाद सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो जाता है, तो जो अहम रहता नहीं है उसमें, बिना अहम से कार्य चलता है, तो उसमें दूसरे दर्शनों में विचार आता है, अज्ञान लेस मानते हैं उसको, संस्कार मात्र। जैसे आप सोच लीजिए, खूब लहसुन के छोंक लगा करके भोजन बनाए, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। अब लगाने के बाद बिल्कुल व्हील पाउडर से खूब धोए उसको, धोने के बाद भी कुछ वासना उसमें रहती कि नहीं रहती है? ठीक इसी प्रकार आप धो लिए, धो लिए का मतलब आपको ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद भी उसके कुछ बांस, जो कर्म चल रहा था ना, वो कर्म फिर भी चलता रहेगा, कुछ समय तक कर्म जो है चलेगा, लेकिन उस व्यक्ति को दृढ़ हो गया है कि संसार मिथ्या है, दुखालयम अशाश्वतम उसको बोध हो गया, फिर भी स्वयं प्रवृत्त नहीं होता है, प्रकृति जो है प्रवृत्त कराती है, प्रकृति कराती है वहां। और जब जिसका ज्ञान नहीं हुआ तो वो कहेगा मैं क्यों करूं, उसमें अहम रहता है, अहंकार उसमें ठोस रहता है। तो इसलिए यहां मिथ्यात्व वासना दारिढ़, संसार मिथ्या है ऐसी वासना जब दृढ़ हो जाती है, स्वस्व कर्मानुसारतः प्रारब्ध क्षय कांक्षया अक्लिश्यंतः प्रवर्तन्ते, बिना क्लेश से वो प्रवृत्त हो जाते हैं। अच्छा, यदि आप कहते हैं कि प्रवृत्त हो जाते हैं, तरही अनाचारे अपि प्रवृत्ति स्यात्, जो अनाचार है, पापाचार है, इसमें भी उन व्यक्तियों की प्रवृत्ति देखी जाएगी। ऐसी आशंका होने पर अति प्रसंगो मासंक्यः स्वकर्म वशवर्तिनाम् अस्तु वा केन शक्येत कर्म वारयितुं वद। स्वकर्म वशवर्तिनाम अति प्रसंगो मासंक्य अस्तु केन शक्यते कर्म वादयितुं वद। इसमें कहते हैं जो अनाचार में यदि प्रवृत्ति कभी आपको दिखाई पड़े, जैसे ज्ञानी पुरुष में, ऐसे हो नहीं सकता, अति प्रसंग मासंक्य, उसमें शंका नहीं करना चाहिए, वो नहीं करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति अभी ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है तो पहले से बहुत संस्कार उसको चाहिए, पहले सारे बुराइयों को हटा करके अच्छाइयों को लाता है जीवन में, सारे बुराइयों को हटाता है, तब तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान प्राप्ति के लायक बनता है, उसके अंदर कोई गलत संस्कार नहीं है। जैसा संस्कार होगा उसके अनुरूप प्रवृत्त होता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, आगे इसी में ही विचार आता है, सुरेश्वराचार्य के उसमें आता है। सुरेश्वराचार्य कुछ लोग कहते हैं, जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा तो कुत्तों के साथ बैठना चाहिए, कुत्ता जैसे खाता पीता तो ऐसे खाना पीना चाहिए, कुछ लोग ऐसे गलत धारणा में रहते हैं। ये बहुत बड़ा सिद्ध महापुरुष है, तो उसके बारे में वहां बहुत खिल्ली उड़ाए हैं। सुरेश्वराचार्य कहेंगे, अरे कुत्ता और तत्व दृश्याम में दोनों में भेद तुमको नहीं दिखाई पड़ता है। कुत्ता की प्रवृत्ति कहां होगी और तत्वज्ञानी की प्रवृत्ति कहां होगी? तत्वज्ञान में जब प्रतिष्ठित होगा तो उसके पहले अपने आप को इतने परिमार्जित करता है, सारे कर्मों को शुद्ध करता है वो। अब अंतःकरण जब शुद्ध होगा तभी तो वो फिर ज्ञान प्राप्ति के लायक बनता है, जिज्ञासा होगी। और उसके अंदर यदि वासनाएं होगी, अशुद्धियां होगी, वो तो शरीर को भी शुद्ध करता है, कर्मों को भी शुद्ध करता है, अंतःकरण को भी शुद्ध करता है, सब इंद्रियों को शुद्ध करता है। शुद्धि करने से तब जाकर के उसके अंदर आत्मज्ञान प्राप्ति करने की योग्यता आती है। तो गलत आचरण कैसे करेगा? गलत आचरण उससे नहीं हो सकता। तो यहां कहते हैं हो सकता है प्रारब्ध में किसका कुछ हो, प्रारब्ध को तो कोई देखा नहीं है। कभी कभी कुछ प्रारब्ध इस प्रकार होता है, अस्तु कहते हैं, यदि प्रारब्ध में कुछ उस प्रकार के आपको दिखाई पड़ता है तो इसमें कहते हैं केन कर्म बारय तुम शक्यते बद, उस कर्म को कौन निवारण कर सकता है, इसके ऊपर कौन बोल सकता है। जैसे एक बार तुलसीदास जी महाराज संध्या के समय किसी दूसरे गांव में जा रहे थे, भक्त आदमी तुलसीदास जी। अब जब जा रहे थे तो उधर से कुछ चोर लोग आ रहे थे, चोर लोग आ रहे थे। अब अंधेरा हो गया था, पगडंडी में चलते चलते जंगल के रास्ते पे जा रहे थे, इनको भी रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनको भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब चोर लोग जो है बिल्कुल मौन होकर के आ रहे थे, तुलसीदास जी भी अपने राम राम मन में जप करते करते जा रहे थे, और दोनों में जो है डैक्स हो गया। तो जो जो चोर था, कौन है? अब तुलसीदास जी कहे, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। तो उनको लगा कि यार हम लोग चोर है, ये भी चोर है। तो इसीलिए एक साथी जो है आज बढ़ गया, एक चोर जो है मिल गया। सब तो अपने ग्रुप को बढ़ाना चाहते ही नहीं चाहते, चोर भी अपना ग्रुप को बढ़ाना चाहता है। तो इसलिए तुलसीदास जी जहां जा रहे थे इनको लगा कि भाई चलो हम भी चलते हैं उधर। अब तुलसीदास जी चोरों के साथ जा रहे हैं, अब कोई व्यक्ति देखेगा तो क्या सोचेगा, ये तो ऊपर से राम नाम और बगल में चोरी है। अब तुलसीदास जी वहां गए साथ में, तो क्योंकि वहां ये मना नहीं कर सकते, पांच सात लोग हैं और ये अकेले हैं, मना भी करेंगे जोर जबरदस्ती ठुकाई कर देंगे, इनको पिटाई कर देंगे। तो इसलिए आपने वो बोले कि चलो ठीक है, इनको भी जोर जबरदस्ती लेकर के गए। लेकर के जब गए तो वहां एक बहुत बड़े सेठ के घर में पहुंचे, सेना डाले, लेकिन वहां विचार किया, यार ये जो है नौ सुखिया है, इसको पहले से यदि अंदर छोड़ देंगे पता नहीं कहीं टकरा गया कुछ हो गया तो सब पकड़ में आ जाएंगे। अरे आप बाहर रहो, कोई आ गया कुछ संकेत मिल गया तो हम लोगों को इशारा कर देना, हम लोग अंदर जा रहे हैं। सारे चोर अंदर चले गए। अब जैसे अंदर चले गए वहां चोरी करने लगे, ढूंढने लगे कहां संपत्ति है क्या है। इतने में तुलसीदास जी के पास एक संघ था जोरदार बजाए, तो सारे चोर जो है भाग करके आ गए। वो कहे कि संघ क्यों बजाए, आप तो कहे कोई दिखाई, मेरे को तो राम और सीता दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपने तो कहा था कोई दिखाई पड़े तो बजाना संग। तो भले वहां चोरों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन चोरी नहीं कर सकता वो व्यक्ति। तो इसलिए अकस्मात यदि ऐसा दिखाई पड़ता है, अस्तु वा यदि अनाचार में प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ रही है तभी भी वो अनाचार नहीं करता है। और यदि करता है केन कर्म बारय तुम शक्यते वद, उसमें उस कर्म को कैसे आप वारण कर सकते हैं, वहां तो जैसे उनको सम्मिलित होना पड़ा चोरों के साथ भी। तुलसीदास जी को भले वो मानसिक रूप से वो परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं लेकिन साथ में जाना पड़ा। कभी कभी हम ही लोग जैसे गाड़ी मोटर में जाते हैं ना, वो शराबी कबाबी बहुत लोग बैठे रहते हैं, कई बार ऐसे होता है। अब खूब गाली गलौज इधर की बात उधर की बात कहीं की बात ये सब चलता रहता है। अब कोई यदि देखेगा अरे ये दोस्तों के साथ कैसे ये बैठे, आपका कर्म है ऐसा। कई बार मैं जाता हूं ऐसे बाहर उधर छत्तीसगढ़ वगैरह में, तो कभी कभी उधर को इतने ज्यादा सुविधा नहीं, बस में जाना पड़ता है। अब शाम के समय आप जाएंगे सब शराबी ही बैठेंगे उसमें, शाम में सब शराबी। अब मुंह अब गाड़ी में बैठेंगे तो उसके मुंह और आपके मुंह लगेगा कि नहीं लगेगा, मैंने आपस में। और शराब की दुर्गंधी इतनी आती है तो हम ऐसा सोचते हैं चलो ये तो प्रारब्ध है, अब इसमें बस में जाना पड़ेगा, सामने आपके शराबी व्यक्ति है। अब आप यदि उसको कुछ कहेंगे तो वो आपके ऊपर डबल बोल देगा, वो एक शब्द भी आप बोलेंगे वो तो होश में है नहीं। जैसे अखंडानंद स्वामी जी महाराज कहते हैं स्वर के साथ यदि आप झगड़ा लगेंगे तो आप भी कीचड़ कीचड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, वो तो कीचड़ से बिल्कुल लथपथ रहता है। तो ठीक इसी प्रकार दुष्ट व्यक्तियों के साथ आप भी मुंह लड़ाएंगे तो आप भी गाली खाएंगे, उसके तो स्वभाव है गाली देना। तो उस जगह पे तत्र मौनम ही शोभनम, मौन रहना ही सुंदरता है। तो इसी प्रकार यहां टीका में देखिए अति प्रसंग इति प्रारब्ध वर्षा एव अति प्रसंगो अपि स्यात् इति आशंक अंगीकरोति। प्रारब्ध में यदि उस प्रकार कोई बलवत कर्म होगा तो वो इसको यहां कहते हैं अति प्रसंगो अपि स्यात्, हो सकता है ऐसी शंका करने से अंगीकरोति, उसका स्वीकार करते हैं कभी कभी इस प्रकार। लेकिन वो मन से कोई कर्म नहीं करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो ब्रह्मज्ञानी होगा, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान जिसको हो गया है, मैं ये कर्म कर रहा हूं ऐसा भाव उससे नहीं होता है। उस जगह पे परिस्थिति उस प्रकार से कुछ करा रहे तो भी उसमें सम्मिलित है, ये उसमें दिखाई पड़ता है। ननु ज्ञानी अज्ञानिनो हो प्रारब्ध कर्मणि अवश्य भोक्तव्यतया समाने तयो कोतो बलक्षण्य सिद्धि इति आशंक्याः। कहते हैं ज्ञानी और जो अज्ञानी है दोनों प्रारब्ध भोग करते हैं, ज्ञानी भी अपने प्रारब्धों को भोग करता है अज्ञानी भी भोग करता है। अवश्य भोक्तव्यतया, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भोगूंगा, अवश्य भोगना पड़ेगा जिसका जो कर्म है। तो दोनों में समान तयो हो, दोनों में समान हो गया, ये भी प्रारब्ध कर्म भोग रहा है वो भी कर रहा है। तो ज्ञानी उससे विलक्षण कैसे हुआ, कुतो विलक्षण सिद्धि इति आशंक्या। ज्ञानिनो ज्ञानिनश्चात्र समे प्रारब्ध कर्मणि न क्लेशो ज्ञानिनो धर्यान् मूढः क्लिश्यत्यधैर्यतः। अत्र ज्ञानिनो अज्ञानिनश्च प्रारब्ध कर्मणि समय ज्ञानिनो धर्यान् न क्लेशो अधर्यतः मूढ़ः क्लिश्यति। कहते हैं अभी जो प्रसंग चल रहा है अत्र, इस प्रसंग में ज्ञानी और अज्ञानी अपने अपने प्रारब्ध को समान रूप से भोग करते हैं। जिसका भी जो प्रारब्ध होगा उसको भोग करेगा। ज्ञानी भी भोग करता है सुख दुख का, अज्ञानी भी भोग करता है सुख दुख का। ज्ञानी नो धर्यान न क्लेशो, ज्ञानी में धैर्य होने से उसको क्लेश नहीं होता है। अधर्यतः मूढ़ः क्लिश्यति, वो जो अज्ञानी है मूढ़ है, उसके पास धैर्य नहीं होने से दुख को प्राप्त करता है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं उसमें आपको स्पष्ट होगा। एक बार एक मूर्तिकार जो है जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह पे पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो उनको लगा कि इससे कुछ बन सकता है। तो जैसे अपने छैनी और हथौड़ी उठाए और एक हथौड़ा लगाए, तो पत्थर चिल्लाए मेरे को क्यों मारता है, पत्थर जो है चिल्लाया, तो छोड़ दिए उसको। अब उसके बगल में दूसरा भी एक पत्थर था, उस पत्थर को भी छैनी और हथौड़े से आस्ते आस्ते मारते 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 मारते, लेकिन वो पत्थर बिल्कुल शांत रहा। जितने भी हथौड़े मारे उसको सहन करता गया, सहन करता गया, तो बहुत सुंदर शंकर भगवान की मूर्ति बन गया। अब वो कुछ क्षण तसल्ली से बैठा वहां, वो शंकर की मूर्ति भी उस पेड़ के किनारे पर रख दिया और फिर वो वहां से चल दिया। अब कुछ दिनों के बाद, लंबे समय के बाद, उसी रास्ते से फिर गुजर रहा था, तो थोड़ी सी उसको स्मृति आई कि इस रास्ते से तो मैं पहले भी गया था, लेकिन देखा कि भाई बोलबम पार करेगा खूब भीड़ लगी हुई थी और वहां एक सुंदर मंदिर बन गया था, सुंदर मंदिर बन गया था, तो ये भी जाकर के क्यू में खड़ा हो गया, चलो एक बार भगवान का दर्शन कर लेते हैं। अब श्रावण महीना चल रहा है, शिव जी का ही महीना है, वो भी क्यू में खड़ा हो गया। वो आगे जाकर के देखता, अरे मैं ही तो ये मूर्ति बनाया था। उसका सब ध्यान में आ गया, आ गया तो उस मूर्ति में लोग फूलमाला चढ़ा रहे हैं, चंदन तिलक लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। और उसके बगल में जो दूसरा पत्थर भी था ना जो चिल्लाया, और उसके ऊपर नारियल ठोक रहे हैं लोग, उसके ऊपर नारियल ठोक रहे हैं। तो उसने कहा जिसको जो एक बार चिल्लाया ना वो तो कंकर बन गया, और जो चिल्लाया नहीं वो शंकर बन गया। तो इसीलिए जिसके पास धैर्य है, तो पहले से जो ज्ञानी व्यक्ति है ना सहन करना शुरू करता है। अभी आप सोच रहे हैं जैसे यहां 8 बजे उठते हैं, वहां गंगा किनारे बहुत सारे महात्मा लोग रात के 3 बजे से उठते हैं, अब 3 बजे से भी उठेंगे गंगा जी में स्नान करने जाएंगे तो पानी ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी, अब उसको सहन करते हैं शुरू से। अब सहन करते करते ऐसे अपने शरीर को बना लेते हैं, चाहे धूप पड़े, चाहे ठंड पड़े, चाहे बारिश हो, चाहे झंझावात हो, कुछ भी हो, ऐसे अपने आप को बना लेते हैं शरीर को कि बाह्य परिवेश उनको कोई कष्ट नहीं दे पाता है। उस जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति, अरे बहुत ठंड है भाई, ये कैसे स्नान करेंगे, गीजर वीजर है कि नहीं थोड़ा देखो, बिना गीजर से स्नान कैसे होगा। अब जो सहन नहीं किया है, बम्बे वाले जाएंगे तो बिना गीजर से स्नान कैसे करेंगे। लेकिन जो अभ्यास कर रहा है पहले से, अब उसके लिए तो उसी में भी सवेरे उठ करके जब ध्यान करेगा, और दूसरा व्यक्ति ठंड है करके और एक कंबल ओढ़ लेगा, देखेंगे वहां धूप निकलने दो, अब पांच पांच दिन तक धूप ही नहीं निकलती है। तो यहां कहने का अभिप्राय, ज्ञानी के पास धैर्य होने से सुख दुख तो आएंगे जो भी प्रारब्ध में है, लेकिन उस सुख दुख को सहन करने के कारण उसको क्लेश नहीं होता है, और अज्ञानी सहन नहीं करने से उसको क्लेश होता है। तत्र दृष्टांतम आह, इस विषय में एक दृष्टांत देते हैं आगे के श्लोक में। मार्गे गन्त्रोर्द्वयोः श्रान्तौ समायामप्यदूरताम् जानन्धर्याद्रुतं गच्छे दन्यस्तिष्ठति दीनधीः। मार्गे गंत्रो द्वयो, गंत्री शब्द है उसके षष्ठी में, गंत्रो जाने वाला, गंता मातृ शब्द से माता होता है, पितृ शब्द से पिता होता है, ऐसे गंत्री शब्द से गंता। तो जो मार्ग में जाने वाले द्वयो, दो व्यक्ति जा रहे हैं, समायम श्रांतो, चलते चलते श्रांत हो गए, क्लांत हो गए, धैर्यात् अधूरताम जानन द्रुतम गच्छेत, अधूरताम जानन, अभी आगे जो गांव आने वाला है ना, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक में है, ऐसा जानने वाला वो थक जाने पर भी अभी शाम से पहले मुझे उस गांव में पहुंचना है, ऐसा सोच करके धैर्यात् द्रुतम गच्छेत, थोड़ा सा ही तो मार्ग है, ज्ञान हो गया उसको, तो थकने पर भी वो चल जाता है, थक गया था, और दूसरा व्यक्ति नहीं जानते हुए आगे गांव है, वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है, आया थक गया और क्या चलना है। अब दूसरे दिन जब वो उठ करके चलता है तो पता लगता है, अरे एक ही किलोमीटर था, मैंने फालतू यहां भूखा प्यासा सारे रात जो है पड़ा रहा, आराम से जा सकता था। तो ठीक इसी प्रकार यहां भी अन्य दीनाधि ही तिष्ठति, जो दूसरा है जो नहीं जानता है वो उस जगह पे दुखी होकर के रहता है, बैठे रहता है। तो इसलिए यहां एक तो धैर्यशील व्यक्ति है, एक बिना धैर्यशील व्यक्ति है। मार्गे इति स्पष्ट है, इसलिए इसके ऊपर कोई टीका जो है नहीं लिखी। अभी जो पहले जहां से ये अध्याय शुरू हुआ था, आत्मानम चेद बिजानियात अयम अस्मिति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरित, ये जो श्लोक ये उपनिषद के हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के, और इस मंत्र के ऊपर ही ये अध्याय लिखा गया है स्पष्ट करने के लिए। इत्थम उपपादितम आत्मानम चेत इति मंत्रस्य पूर्वार्धार्थम अनुबदन फल प्रदर्शन परम उत्तरार्धम अवतारयति। जो आत्मानम चेत बिजानिया जो मंत्र है उसके जो पूर्वार्ध अर्थम अनुबदन, इसके पहले जो अर्थ है उसका अनुवाद करते हुए फल प्रदर्शन परम उत्तरार्धम अवता रहे थे, उसका जो फल है, क्या फल है उसको दिखाने के लिए इसके आगे किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरित, ये फल दिखाएंगे उसमें। जिस व्यक्ति को अपरोक्ष ज्ञान हो गया, आत्मानम चेद बिजानियात, आत्मा को जो जान लिया, कैसे अयम अस्मि पुरुषः, ऐसा जिसको बोध हो गया, मैं शरीर हूं ऐसा नहीं, मैं सर्वव्यापक आत्मा हूं, ऐसा जिसको ज्ञान हो गया, बहुत सुंदर अपरोक्षानुभूति में उसमें शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, काच भूमो जलत्वम्बा जल भूमो ही काचता तद्वत् आत्मनि देहत्वम पश्यत्य ज्ञान योगतः। महाभारत में पांडव लोग दूसरा राज्य बनाए, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर को दो भाग बना दिए, और भगवान के निर्देश के अनुसार जो है मय दानव आकर के उसको बनाए, निर्माण किए। अब जब निर्माण किए, इतने सुंदर ढंग से बनाए उसको, कोई भी व्यक्ति देखेगा तेरा इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या बनाए, इसके आगे क्या बनाएंगे, ऐसी जिज्ञासा आपकी बढ़ती जाएगी। तो वहां दुर्योधन भी गया था, शकुनी भी गया था, तो इन लोगों को लगा यार ये तो भी हस्तिनापुर से भी सुंदर लग रहा है, क्या क्या है इसको देखना पड़ेगा, क्या क्या है ऐसे देखना पड़ेगा। तो वहां काच भूमो जलत्वम्बा, काच को ऐसे जड़े हैं ऐसा लगता है कि पानी बह रहा है उसमें, ऐसे सुंदर ढंग से काचों को जड़े थे तो पानी बह रहा है ऐसा, और जल को ऐसे गति में उसमें छोड़े थे ऐसे कांच लगेगा उसमें, कांच जैसे। काच भूमो जलत्वम्बा जल भूमो ही काचता, अब जल को देखेंगे तो उसको लगेगा कि भाई कांच है, और दुर्योधन इसी में फेल हो गया, दुर्योधन जो है इसी में फेल हो गया। लेकिन वहां जितने भी रहने वाली दासी दास थे वो सब जानते थे कि ये पानी है और ये जल है, उनको अपरोक्ष साक्षात्कार था कि जल है ये पानी है, और दुर्योधन को ऐसे नहीं था, दुर्योधन तो भ्रम में था, पानी को जो है कांच समझ गया, कांच को पानी समझ गया, तो भ्रम हो गया कि नहीं, अपरोक्ष ज्ञान उसको नहीं था। तदवत आत्मनि देहत्वम, आत्मा में देह को मान लिया कि देह जो है यही मैं हूं। पश्यति अज्ञान योगतः, अज्ञान के योग से मूढ़ व्यक्ति इस प्रकार देखता है, शरीर को ही मैं मानता है, जो शरीर है यही मैं हूं, इससे दूसरा तो कुछ दिखाई नहीं, कहां आत्मा वात्मा है, आत्मा कहां है, कोई आत्मा तो है नहीं, शरीर ही दिखाई पड़ता है। तो इसलिए यहां जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया कि शरीर से विलक्षण आत्मा है, और शरीर कैसा है, माया मात्र है, दृश्य मात्र है, कुछ उसमें है ही नहीं, दिखाई मात्र पड़ता लेकिन है नहीं, जैसे स्वप्न के शरीर दिखाई भले पड़ता है लेकिन होता है क्या, नहीं होता है। जैसे स्वप्न में आप उड़ रहे हैं शरीर से, कोई व्यक्ति सोचेगा मैं स्वप्न में उड़ रहा था तो अभी भी उड़ सकता हूं, तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वो भले वहां दिखाई पड़ रहा है लेकिन वो है नहीं। ठीक इसी प्रकार जागृत जो शरीर है, जब आप विवेक विचार करेंगे और अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाएगा तो पता लगेगा ये भी स्वप्न शरीर जैसा है, जैसे स्वप्न के शरीर है ऐसे ये भी शरीर है, ऐसा होगा। तो इससे अपरोक्ष ज्ञान जब आपको हो जाएगा, मैं सर्वव्यापक आत्म तत्व हूं, और जो संसार है ये केवल प्रतीति मात्र है, दिखाई मात्र पड़ रहा है, तो उसको यहां फल दिखाएंगे, उसके लिए क्या फल है। तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपस्यतः, इसावास्य उपनिषद में उसको बतलाए वो किस कहा किसको मोह करेगा और किसके अभाव में शोक करेगा, किसके नाश होने से शोक करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उस फल को अभी दिखाएंगे इसके आगे, पहले अपरोक्ष साक्षात्कार को दिखाइए। किमिच्छन आत्मानम चेत बीजानियात अहम अस्मिति पुरुष, ये जो है अपरोक्ष साक्षात्कार को दिखाए। आगे किम इच्छन कस्य काम आय शरीरम अनुसंजरित, उसको आगे के श्लोक में बताते हैं। साक्षात्कृतात्मदिहि सम्यक् गवि पर्यवाधितः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंजरे। सम्यक साक्षात्कृतात्मदेही, साक्षात आत्मा को अनुभव कर लिया। कृतात्मधी अविपर्यय बाधित, विपर्यय से जो बाधित नहीं है, शरीर को आत्मा जो नहीं मानता है अथवा संसार को सत्य नहीं मानता है, ऐसे जिस साधक को बोध हो जाता है। किम इच्छन, क्या कामना करते हुए, कस्य कामाय, उस व्यक्ति का शरीरम अनुम संजरित, शरीर के पीछे संताप को प्राप्त करता है। संताप अनुसंजरित आगे इसमें आएगा, उसमें शरीर के पीछे नहीं पड़ता। जैसे हम लोग शरीर के पीछे पड़ते हैं, क्या खाना है, एसी की एसी लगानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कमरा कैसे बनाना पड़ेगा, शरीर के लिए तो सब किया जाता है। आप कार क्यों खरीदते नहीं, आराम से मैं आना जाना करूंगा। संताप, संताप को प्राप्त न करें। तो इसलिए यहां शरीर के पीछे, शरीर के लिए, क्योंकि उसके दृष्टि में शरीर क्या है, मिथ्या हो गया। अब मिथ्या जब हो गया तो मिथ्या के पीछे दौड़ेगा क्या, नहीं दौड़ता है। लेकिन जब तक सत्य मानता था तब उसके पीछे दौड़ता था, और सपना संताप भी उनको मिलता था, दुख भी उसको मिल रहा था शरीर के कारण। तो उस चीज को यहां कहते हैं साक्षात कृतात्मदेह, आत्मा को साक्षात अनुभव कर लिया। यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात जो अपरोक्ष ब्रह्म है, देखिए इसका ज्ञान तो सबको है, प्रत्येक व्यक्ति को है। मैं हूं ऐसा ज्ञान सबको है कि नहीं है, मैं हूं लेकिन मैं कैसा है, शरीर के अंदर छोटा सा एक मैं है, शरीर के अंदर एक छोटा सा मैं है। इसी को ही शास्त्र परिशुद्ध करता है कि उस आत्मा में शरीर जो है प्रतीत हो रहा है, आत्मा में शरीर प्रतीत हो रहा है। जैसे स्वप्न में आप इतने बड़े बंबई को देखते हैं तो बंबई कहां दिखाई पड़ता है, आत्मा में। इतने बड़े बंबई नगरी को आप देखेंगे, सारे विश्व को देखेंगे, आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक भी आप देखेंगे। तो जहां भी देखते हैं ना कहीं तो आपको देखना पड़ेगा। निराधिष्ठाने भ्रमो अनुत्पत्ति ही, बिना अधिष्ठान के भ्रम कभी होता नहीं है। रस्सी होगी तभी तो वहां सर्प दिखाई पड़ेगा, बिना रस्सी से सर्प कहां से वहां दिखाई पड़ेगा। इसलिए जहां आप इतने बड़े संसार को देख रहे हैं वो है आत्मा। अब उसी की ही खोज करनी पड़ती है जहां आप सारे संसार को देख रहे हैं। तो इसलिए सहजता में समझ में आ जाए इसलिए स्वप्न को लेते हैं। स्वप्न में सब चीज दिखाई पड़ती है। अब दिखाई पड़ती है किसको? दिखाई पड़ती है आपको। आपको ही तो दिखाई पड़ती है सब सारी चीजें। लेकिन आप जो है सब चीजों को सत्ता और स्फूर्ति देते हैं तब जाके वो सारी चीज दिखाई पड़ेगी। जैसे रस्सी पड़ी हुई है वहां आप सर्प देखिए तो रस्सी के सत्ता उसकी जो सत्ता और स्फूर्ति जो है सर्प में आ जाती है। कैसे? रस्सी जितनी लंबाई चौड़ाई की होगी सर्प भी उतनी लंबाई चौड़ाई की हो जाएगा क्यों? अब रस्सी जो है मोटी है वो सर्प पतला दिखाई पड़ेगा क्या वहां? जैसे है ऐसे। तो उसकी सत्ता जो है रस्सी की सत्ता सर्प में आ जाती है और रस्सी दिखाई पड़ती है इसलिए स्फूर्ति भी उसमें सर्प भी दिखाई पड़ता है। दोनों चीजें आ जाती है। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण संसार को सत्ता और स्फूर्ति देने वाले स्वयं ही है। आप स्वयं ही देते हैं। तो इसी प्रकार यहां वही अधिष्ठान है, बाकी कल्पित है, अध्यस्त कल्पित है, बाकी सब कल्पित है। अब जैसे कल्पित है आपको बोध हो जाएगा तो प्रवृत्ति निवृत्ति खत्म। कल्पित जब हो जाए तो उसके बाद दोनों चीजें नहीं होगी। तो उस चीज को यहां बताते हैं जिसको ऐसे हाँ देखो बुद्धि की जो साक्षी है ना उसी को ध्यान में आपको लाना पड़ेगा। बार बार कह देव यो मनः साक्षी, वो अधिष्ठान कौन है? वहां कहते हैं जो मन के साक्षी है। अब मन का अभिप्राय क्या है? विचार है। मन का अभिप्राय है अनेक प्रकार के, उसमें अच्छे विचार भी होंगे बुरे विचार भी होंगे। सारे विचारों का गड्ढर जो माने एक क्या कहते हैं ढेर है उसको मन कहते हैं। अब उन सब चीजों को जानने वाले कौन है? सारे विचारों को आप ही जानते हैं, आप ही आत्मा है, आप ही जानते हैं। अब उसी में जो है मन को केंद्रीभूत करना पड़ेगा। मन को जैसे हम लोग इधर उधर फैलाते रहते हैं तो जब एकाग्रता होगी तो मन उसी में जो है रुक जाएगा। यही मैं हूं। तो अहम वही अहम है लेकिन व्यवहार के अहम से भिन्न है। व्यवहार के अहम क्या है? सुषुप्ति अवस्था में अनुपलब्ध होता है। व्यवहार में जो मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं करते हैं, इसमें इससे भी इसको जो धारण कर रखा है इसके ऊपर का मतलब आत्मा के ऊपर ये व्यवहारिक अहम कभी उपलब्ध होता है कभी अनुपलब्ध हो जाता है। लेकिन आत्मा जो है नित्य है, जागृत स्वप्न में भी है और सुषुप्ति में भी है। जागृत स्वप्न में तो बोध नहीं हो पाता उस प्रकार, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में अहम के अभाव में भी रहता है। तो जागृत अवस्था में कैसे खोज करेंगे? कहते हैं कि जो विचारों को जान रहा है, हर विचारों को जो जोड़ने वाला है वो कौन है? आप ही तो जानते हैं, दूसरा तो वहां कोई है नहीं। तो उसी में ही अपने मन को जो है ना केंद्रीभूत करना पड़ेगा। तो उसके लिए बाहर नहीं अंदर जाना पड़ेगा। तो इसलिए शास्त्र में कहते हैं शरीर के पीछे इंद्रियां है, इंद्रियों के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है और बुद्धि को भी धारण करने वाले आप हैं। सबके पीछे जो है आप हैं क्योंकि ये सब प्रतीति है, दिखाई पड़ रहे हैं, इनको आप जान रहे हैं। जो जानता है, जिस विषय को आप जानते हैं उस विषय से आप अलग हैं। तो शरीर को जानते हैं, इंद्रियों को जानते हैं, मन बुद्धि को जानते हैं, तो इससे आप विलक्षण हैं। उसी में ही मन को ले जाना है, क्योंकि मन कहीं ना कहीं हर समय लगा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं लगा हुआ रहता है। तो वहां से हटा करके उस चेतना में मन को ले जा करके स्थापित करना पड़ेगा। और तो फिर आगे चल करके देखना पड़ेगा, सारा संसार ऐसे आपकी आत्मा में प्रतीत हो रहा है, जैसे आपके शरीर इंद्रियां प्रतीत हो रहे हैं, सारा संसार हो रहा है, केवल एक शरीर नहीं, अनंत शरीर, जितने भी जो भी सब दिखाई पड़ रहा है, जड़ चेतन सब। तो व्यक्ति फिर आत्मा जो है सर्वव्यापक हो गया, उसी में ही सब दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे सिनेमा के स्क्रीन में सारी चीजें जो है आती जाती रहती है, स्क्रीन तो ऐसे के ऐसे है, स्क्रीन जो है वैसे के वैसे है, वो सर्वव्यापक है, लेकिन व्यक्ति स्क्रीन को नहीं देख पाता है, चित्र विचित्रों को देखता रहता है, कौन आया कौन गया, क्या घटना घटी, ये सब दिखाई पड़ते हैं। तो खोज जब करेंगे तो अनुभव में आ जाएगा कि मैं ही सबके दृग रूप हूं। ऐसा बोध जब होगा, इसी को तम पदार्थ का शोधन कहते हैं वेदांत की भाषा में। तद पद को शोधन करना नहीं पड़ता, वो पहले से परिशुद्ध है। तम पद के शोधन करने में ही समय लगता है, इसका जब शोधन हो जाएगा तो यही वही ब्रह्म है। जैसे आप झरोके में जिस आकाश को देखते हैं वही महाकाश है, भले वो संकीर्ण दिखाई पड़ता है लेकिन वही महाकाश है, ये बोध हो जाता है। तो ऐसा इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ऐसे साक्षात बोध जिसको हो जाता है, वो फिर किसके पीछे, किस इच्छाओं को लेकर के शरीर के पीछे जो है दुख कष्ट को प्राप्त करेगा, ये इसका विचार चलेगा, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।